معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ 5 ہے، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول بلو برڈ گروپ. اس کے مصنف مظہر کلیم ہیں اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر لطیف. آپ کا مطلب ہے کہ انہیں یہاں آزاد چھوڑ دیا جائے؟ لوگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. دیکھو، ہم نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے، اب ہمارا کسی سے کوئی واسطہ نہیں رہنا چاہیے. پہلے ہی میری ایجنسی کے 3 اہم ایجنٹ ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے اب میں تمہیں ضائع نہیں کرنا چاہتا. جہاں تک ورکنگ پیپرز کا تعلق ہے تو وہ میں نے حکومت کے حوالے کر دیے ہیں، اب حکومت جانے اور ورکنگ پیپرز. البتہ میں حکومت کو اطلاع دے دوں گا اور بس. تم نے بہرحال اس خود سامنے نہیں آنا، کرنل ریچرڈ نے کہا. باس، آپ کو معلوم ہے کہ بلو برڈ گروپ کیا ہے اور اس کا سربراہ کون ہے؟ لوگی نے کہا. نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ مجھے تو اس نام پر بھی اعتراض ہے. سائنسدانوں کے گروپ کا ایسا احمقانہ نام رکھا گیا ہے جیسے یہ بدماشوں یا گینگسٹروں کا گروپ ہو، کرنل ریچرڈ نے کہا. باس، یہی تو اس میں خصوصی پوائنٹ رکھا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو اسے ڈھونڈنے نکلے گا وہ اس نام کی وجہ سے انڈر ورلڈ میں تلاش کرتا رہے گا، لیکن اس گروپ کا کوئی تعلق انڈر ورلڈ سے نہیں ہے. البتہ اس گروپ کا سربراہ ایک معروف گینگسٹر ضرور ہے، لیکن وہ صرف اس گروپ کی ضروریات پورا کرتا ہے اور بس، لوگی نے کہا. تمہیں کیسے اس بارے میں معلوم ہے؟ کرنل ریچرڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. اس گروپ کا انتظامی انچارج ناراک کا معروف گینگسٹر مارکو ٹینس ہے اور وہ میرا دوست ہے، لوگی نے بڑے فخری لہجے میں کہا. مارکو ٹینس کا نام تو میں نے بھی سنا ہوا ہے، کرنل ریچرڈ نے کہا. وہ اس وقت ناراک کی انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ ہے اور وہ اس قدر خفیہ رہتا ہے کہ سوائے چند خاص افراد کے اور کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. بس ایک خصوصی فون نمبر ہے جو کسی صورت ٹریس نہیں ہو سکتا. اس فون کے ذریعے اس کے احکامات ملتے ہیں اور جو اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے اسے انعامات، اور جو عمل نہیں کرتا دوسرے روز اس کی لاش ملتی ہے، لوگی نے کہا. تم کیسے اس سے واقف ہو؟ کرنل ریچرڈ نے پوچھا. وہ میرا دوست ہے، لیکن اس نے مجھ سے بھی حلف لیا ہوا ہے کہ میں کبھی اس کے بارے میں زبان نہیں کھولوں گی. اس کے علاوہ اس گروپ کا انچارج سائنسدان ڈاکٹر ہیری ہے، وہ بھی میرا دوست ہے، لیکن وہ مجھ سے مارکو ٹینس کے ذریعے ملتا ہے. مارکو ٹینس کا اچانک فون آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہیری مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ساتھ ہی وہ کوئی ایڈریس بتا دیتا ہے تو میں وہاں پہنچ جاتی ہوں اور ڈاکٹر ہیری بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر ہیری نے بھی مجھے آج تک نہیں بتایا کہ ان کا گروپ کہاں کام کرتا ہے، لوگی نے کہا. اس کا مطلب ہے کہ تم حقیقی خطرے سے دو چار ہو. اگر عمران کو علم ہو گیا کہ تمہیں اس بارے میں معلوم ہے تو وہ تمہاری روح سے بھی سب کچھ اگلوا لے گا، کرنل ریچرڈ نے کہا. آپ میری توہین کر رہے ہیں کرنل، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس عمران سے خود ٹکرا کر اس کا خاتمہ کر دوں گی، لوگی نے غصے کے لہجے میں کہا. بہتر تو یہ ہے کہ تم ایک سائٹ پر ہو کر تماشا دیکھو، لیکن تمہاری عادت اور فطرت میں بھی میں بھی جانتا ہوں کہ اگر تمہیں زبردستی روکا گیا تو تم ناراض ہو جاؤ گی، اور کم از کم میں تمہیں ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے، کرنل ریچرڈ نے کہا. تھینک یو کرنل، آپ بے فکر رہیں. میرا وعدہ ہے کہ میں دانستہ سامنے نہیں آؤں گی، البتہ اگر وہ مجھ سے خود آ کر ٹکر لے تو میں پھر پیچھے نہیں ہٹوں گی، لوگی نے کہا. اوکے ٹھیک ہے، میں پاکیش میں ایک گروپ سے کہہ دیتا ہوں، وہ ایئرپورٹ پر نگرانی کرائیں گے. پھر جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی وہاں سے روانہ ہوں گے ہمیں اطلاع مل جائے گی، کرنل ریچرڈ نے کہا. اوہ یہ بہت اچھا رہے گا، لوگی نے خوش ہوتے ہوئے کہا. اوکے میں ابھی تمہارے سامنے بات کرتا ہوں، कर्नल रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर फोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। नाराज केक प्राइवेट रिहायश गाह में इमरान के साथी मौजूद थे जबकि इमरान खुद गायब था। इमरान के साथियों में जूलिया, सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर शामिल थे। वफाकी एशिया से बराह रास्त नाराक आने के बजाय पहले एक लॉन्च के जरिए काफ्रिस्तान पहुंचे। काफ्रिस्तान से वो ग्रेट लैंड गए और फिर ग्रेट लैंड से वो नाराक पहुंचे थे। ग्रेट लैंड में उन्होंने मेकअप कर लिया था और अब वो एक्रीमियन मेकअप में थे। इमरान ने पहले ही इस कोठी का इंतजाम कर रखा था, इसलिए एयरपोर्ट से वो सीधे यहीं आए थे। फिर इमरान यहाँ से कार लेकर बाहर चला गया और उसे गए हुए 2 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई थी, जबकि सबके सब इस दौरान 2 बार कॉफी पी चुके थे। सारी दुनिया तब्दील हो जाएगी, लेकिन इमरान में किसी तब्दीली का आना नामुमकिन है। अचानक सफदर ने कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या हुआ है? जूलियो ने चौंक कर पूछा। होना गया है वही पुराना तरीका कार जो बगैर हमें कुछ बताए यहाँ ले आया है और अब हम बैठे कॉफी पी रहे हैं। ना हमें मिशन का इल्म है और ना ही ये मालूम है कि हमने यहाँ करना क्या है और ना ही इमरान साहब ने कुछ बताना है, और ऐसा तवील अरसे से हो रहा है, सफदर ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, ऐसी सिचुएशन लाखों नहीं तो हजारों बार जरूर पेश आई होंगी और आज भी वही हाल है, जूलिया ने एक तफील सांस लेते हुए कहा। चीफ भी तो कुछ नहीं बताता, सिर्फ कह देता है कि इमरान ब्रीफ करेगा और हम वाकई अहमकों की तरह साथ साथ लदे फिरते हैं, सफदर ने कहा। तुम पर आज कुनूतियत का कोई खास दौरा पड़ गया है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कुनूतियत मतलब है मायूसी का क्या दौरा पड़ना है मिस जूलिया? बस वैसे ही जहन में आ गया है, वैसे इस मसले को किसी न किसी अंदाज में हल होना चाहिए, सफदर ने कहा। जिस तरह इमरान काम करता है तुम भी काम करो तो मसला हल हो जाएगा, अचानक कैप्टन शकील ने कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? सफदर ने हैरान होकर पूछा। जब हम लोग मिशन में शामिल होते हैं तब तक इमरान साहब आधे से ज्यादा मिशन मुकम्मल कर चुके होते हैं। वो हमारी तरह फ्लैटों में बंद होकर सिर्फ टीवी नहीं देखते या तकरीबात मुनाकिद नहीं करते, बल्कि वो हर वक्त अपने कान और आंखें खुली रखते हैं और जैसे ही उन्हें इत्तला मिलती है वो भाग पड़ते हैं। और जहां तक मेरा ख्याल कि चीफ को भी खुद तफसील का इल्म नहीं होता, इसे भी सिर्फ मिशन के बारे में ही इल्म होता है, इसलिए चीफ हमें ब्रीफ करने के बजाय ये काम इमरान के जिम्मे लगा देता है। और जैसा कि सफदर ने कहा, ऐसी सिचुएशन हजारों बार पेश आ चुकी हैं, इसलिए कि हम खुद काम नहीं करते। इमरान इस वक्त भी इस मिशन के सिलसिले में काम करता फिर रहा होगा, जब खाना तैयार हो जाएगा तो फिर वो हमें खाने में शरीक करेगा और हम खुशी से कहकहे लगाते हुए वापस रवाना हो जाएंगे, कैप्टन शकील ने तफसील से बात करते हुए कहा। लेकिन जब हमें कुछ मालूम ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बोलो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। आपने कभी मालूम करने की कोशिश की है? कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, हजारों बार, लेकिन वो परों पर पानी पड़ने ही नहीं देता, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मेरा मतलब है कि इमरान से हटकर आपने मिशन के बारे में मालूम करने की कोशिश की है, कैप्टन शकील ने कहा। हमें कैसे मालूम हो सकता है जबकि हमें अलिफ बे का भी इल्म नहीं होता, जूलिया ने कहा। हालांकि अगर आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो मालूम हो सकता है, कैप्टन शकील ने कहा। वो कैसे? चलो तुम ही बता दो कि हमारा मौजूदा मिशन क्या है, इस बार सफदर ने कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कैप्टन शकील को चैलेंज कर रहा हो। फाकेशिया से कोई चीज चोरी करके नाराज लाई गई है। अब मैं नहीं कह सकता कि ये चीज कोई आला है, फार्मूला है या कागजात वगैरह है, और इस चोरी का ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी से भी है और यहाँ की अंडरवर्ल्ड से भी। हमने वो चीज वापस हासिल करनी है, कैप्टन शकील ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तो सब हैरत से उसका मुंह देखने लगे। क्या हुआ? आप सब इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने ये सब अंदाजा कैसे लगाया है? क्या तुम्हें इमरान ने बताया है या इशारे दिए हैं? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने ये सब अंदाजा इमरान साहब की बातों से लगाया है। इमरान साहब खुलकर बात नहीं करते, लेकिन इशारे दे जाते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। कैसे इशारे? तफसील से बात करो, जूलिया ने कहा। इमरान साहब जिस अंदाज में नाराज पहुंचे हैं, यह अंदाज वो इस वक्त अपनाते हैं जब किसी बड़ी और पावरफुल एजेंसी को डॉज देना मकसूद हो। इसलिए यह हमारे मुकाबले क्रीमिया की कोई बड़ी एजेंसी काम कर रही है, और ऐसी एजेंसी इस हद तक काम करती है कि पाकेशिया एयरपोर्ट पर भी निगरानी करे। जब इस एजेंसी ने पाकेशिया में कोई मिशन मुकम्मल किया होता है, और उसे खतरा होता है कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस लाजमन इसके पीछे आएगी, और हमारे यहाँ आने का भी यही मतलब है। जो मिशन ये एजेंसी पूरा करना चाहती थी, वो पाकेशिया में पूरा हो गया है, और अब हम उसे दोबारा हासिल करने या खत्म करने के लिए यहाँ आए हैं, कैप्टन शकील ने कहा। तुमने अंडरवर्ल्ड की भी बात की थी, क्यों? सफदर ने कहा। इमरान साहब ने रास्ते में बताया था कि टाइगर भी इस मिशन पर काम कर रहा है, और टाइगर को अलहदा काम देने का मतलब है कि इस मिशन का कोई ना कोई ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से भी है, कैप्टन शकील ने कहा। सरकारी एजेंसियों का अंडरवर्ल्ड से क्या ताल्लुक हो सकता है? जूलिया ने कहा। अब तफसील का तो मुझे इल्म नहीं है, मैंने तो इशारों की मदद से जो नतीज अखज किए हैं वो ही बता दिए हैं, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसी लम्हे दूर से कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। इमरान साहब है, मैं फाटक खोलता हूँ, सफदर ने उठते हुए कहा, और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। तुम खामोश हो तनवीर, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जूलिया ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। हाँ ठीक है, शुक्रिया, तनवीर ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। थोड़ी देर बाद इमरान और उसके पीछे सफदर अंदर दाखिल हुए। मैंने इमरान साहब को बता दिया है कि कैप्टन शकील ने हमें मिशन की तफसील बता दी है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कैप्टन शकील ने इल्म नजूम सीख लिया है? लेकिन एक बात है, बादशाह के बेटे शहजादे नजूम तो सीख सकते हैं, लेकिन नजूमी नहीं बन सकते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब हुआ इस बात का? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। इमरान साहब एक मशहूर किस्से के बारे में बात कर रहे हैं। किसी जमाने में एक बादशाह ने सोचा कि उसके बेटे को इल्म नजूम का माहिर होना चाहिए। चुनाचा बादशाह ने दरबार के बड़े नजूमी को कॉल किया और उसके जिम्मे लगाया कि वो शहजादे को नजूम में माहिर कर दे। नजूमी ने कहा कि वो इल्म तो शहजादे को सिखा देगा, लेकिन शहजादा माहिर नजूमी नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें फैसला कुन कुवत मौजूद नहीं है जिससे नजूमी फैसला करते हैं। मगर बादशाह ने नजूमी की बात तस्लीम नहीं ना की। चुनाचा नजूमी ने शहजादे को इल्म नजूम सिखाना शुरू कर दिया। जब इसने शहजादे को इल्म नजूम सिखा दिया, तो बादशाह ने भरे दरबार में शहजादे का इम्तहान लिया और अपनी मुट्ठी बंद करके उसने शहजादे से पूछा कि वो इल्म नजूम की मदद से बताए कि उसकी मुट्ठी में क्या है। शहजादे ने हिसाब लगाकर बताया कि बादशाह की मुट्ठी में चक्की का पाठ है। ये जवाब सुनकर बादशाह को नजूमी पर बेहद गुस्सा आया कि इसने ये कैसा इल्म नजूम शहजादे को सिखाया है। उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि नजूमी की गर्दन उड़ा दी जाए, लेकिन नजूमी ने दरख्वास्त की कि पहले उसकी बात सुन ली जाए। चुनाचा उसने बादशाह को बताया कि असल में शहजादे में दुरुस्त फैसला करने वाली सलाहियत नहीं है, इसलिए शहजादा दुरुस्त इशारों की मदद के बावजूद दुरुस्त फैसला नहीं कर पा रहा। नजूमी ने बताया कि हिसाब के मुताबिक इशारा मिला कि बादशाह की मुट्ठी में कोई गोल चीज है जिसके दरमियान सुराख है। अब ये बात शहजादे को सोचनी चाहिए थी कि गोल और दरमियान में सुराख वाली ऐसी चीज क्या हो सकती है जो बादशाह की मुट्ठी में भी आ जाए। जाहिर है कि ये अंगूठी ही हो सकती है, लेकिन शहजादे ने बगैर सोचे समझे कह दिया कि बादशाह की मुट्ठी में चक्की का पाठ है, क्योंकि चक्की का पाठ भी गोल होता है। और उसके दरमियान में भी सुराख होता है। और नजूमी की बात सुनकर बादशाह बेहद शर्मिंदा हुआ। सफदर ने मजे ले लेकर तफसील बता दी। वो सब बेख्तियार हंस पड़े। तुम्हारा मतलब है कि कैप्टन शकील दुरुस्त नतीजे तक पहुंच गया है, मगर शहजादे की तरह गलत बात कर दी है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मतलब है कि अगर कैप्टन शकील जैसा शागिर्द मिले तो उस्ताद बेचारे को गर्दन ही कटवानी पड़ेगी, इमरान ने जवाब दिया। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। तो फिर तुम असल बात बता दो, जूलिया ने हंसते हुए कहा। एक शर्त पर बता सकता हूँ, अगर तनवीर मेरे साथ चलने पर तैयार हो जाए, इमरान ने कहा। तो तनवीर समेत सब चौंक कर उसे देखने लगे। ये क्या कह रहे हो, तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस अब जाने की जरूरत नहीं रही, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था कि तुम बोलना भूल गए हो, इमरान ने जवाब दिया। तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। मैंने भी तनवीर से यही बात पूछी थी कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम खामोश क्यों हो, जूलिया ने कहा। अरे वाह, मैं ख्वामखा डॉक्टर से वक्त लेने के लिए इसकी मिन्नत करता रहा। असल इलाज तो तुमने पहले ही कर दिया था, इमरान ने कहा। मैंने इलाज कर दिया है, क्या कह रहे हो, जूलिया ने हैरत से आंखें फाड़े हुए कहा। तुमने तनवीर की तबीयत पूछी, उसके बाद बाकी इलाज क्या रह जाता है। तुम किसी से उसकी तबीयत पूछ लो तो कब्र तक पहुंचा हुआ आदमी भी बेख्तियार उठ बैठेगा, इमरान ने जवाब दिया। तो कमरा बेख्तियार तहकों से गूंज उठा। तुमसे तो बात करना ही अजाब है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बात मत किया करो, बस तबीयत पूछ लिया करो, इमरान भला कहाँ से आसानी से बाज आने वालों में से था। इमरान साहब, आप मिशन के बारे में बता रहे थे, सफदर ने मदाखलत करते हुए कहा। कैप्टन शकील ने बता तो दिया है और क्या बताऊं, इमरान ने जवाब दिया। तो अब एक बार फिर सब चौंक पड़े। अभी तो आप कैप्टन शकील को अहमद शहजादे से मिला रहे थे, अब खुद उल्टी बात कर रहे हो, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने तो ये नहीं कहा कि कैप्टन शकील ने गलत बात की है, मैंने तो ये कहा है कि इसने हिसाब दुरुस्त लगाया है लेकिन नतीजा गलत जाहिर किया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा नतीजा, जूलिया ने पूछा। यही अंगूठी और चक्की का पाठ, इमरान भला कहाँ आसानी से बाज आने वाला था। और जूलिया ने बेख्तियार इस तरह लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए जैसे वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। तुम क्यों इसके मुंह लगती हो, ये जानबूझकर ऐसी बातें करता है ताकि हम पर अपनी अहमियत साबित कर सके, अचानक खामोश बैठा तनवीर बेख्तियार फट पड़ा। तनवीर दुरुस्त कह रहा है इमरान साहब, आप वाकई हमारे साथ मुसलसल चूहे बिल्ली वाला खेल खेलते रहते हैं, और अब ये मामला वाकई बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, सफदर ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जिस जिसकी कुव्वत बर्दाश्त कमजोर हो चुकी है वो अपना नाम लिखवा दे ताकि मैं चीफ को रिपोर्ट दे सकूं, और वो इनके बजाय कुव्वत बर्दाश्त रखने वाले मेंबरान को टीम में शामिल कर सके और आप लोगों का मुफ्त इलाज हो सके, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तुम वाकई हमारे दुश्मन हो, तुम हमें हलाक कराना चाहते हो, जूलिया ने होठ चबाते हुए कहा। जूलिया की इस बात से माहौल एकलख्त इंतहाई गंभीर सा हो गया। यूं महसूस होने लगा जैसे माहौल पर शदीद तनाव का पर्दा सा तन गया हो। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी, और गंभीर खामोशी में फोन की घंटी के बजने से ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक खौफनाक बम फट पड़ा हो। वो सब बेख्तियार उछल पड़े। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। आर्नल बोल रहा हूँ मिस्टर मार्कर माइकल, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस, कहो कुछ मालूमात मिली है या नहीं, इमरान ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा। इंतहाई कोशिश के बावजूद इतना मालूम हो सका है कि इस ग्रुप का इंतजामी इंचार्ज एक बदनाम गैंगस्टर मार्को टेंस है, लेकिन मार्को टेंस आज तक किसी के सामने नहीं आया, सिर्फ फोन पर उसके अहकाम मिलते हैं और जो इन अहकाम की तामील कर देता है उसे भारी इनामात मिलते हैं, और जो नहीं करता उसकी और उसके खानदान के सब अफराद की लाशें फुटपाथ पर पड़ी हुई मिलती हैं। जिनके सीनों में मार्को टेनिस के नाम के कार्ड लगे होते हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर उसे कहाँ और कैसे तलाश किया जाए, कोई टिप? इमरान ने कहा, ऐसी कोई हतमी टिप तो सामने नहीं आई। अलबत्ता इतना मालूम हो सका है कि नाराज के बदनाम इलाके वॉर स्ट्रीट में एक बदनाम तरीन क्लब है, जिसका नाम भी वॉर स्ट्रीट क्लब है। इसके मालिक और जनरल मैनेजर ब्राउन का, जो वॉर स्ट्रीट का बहुत बड़ा गुंडा भी है, किसी न किसी तरह बराह रास्त ताल्लुक मार्को टेन से है। लेकिन इस ब्राउन से मिलने के लिए बेशुमार रुकावटें दूर करना पड़ती हैं, और मामूली से शुभ पर भी इंसानों को बगैर किसी हिचकिचाहट के गोलियों से उड़ा दिया जाता है, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। इस रेड वुल्फ के बारे में क्या खबर है? इमरान ने कहा, कर्नल रिचर्ड के मुताबिक अपना काम कर रहा है, वैसे इसका कोई ताल्लुक इन लोगों से नहीं है, ये बात हतमी है, उसी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, बेहद शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। कैप्टन शकील तो कह रहा था कि मिशन किसी फार्मूले की वापसी का है, और तुम्हें गैंगस्टरों और बदमाशों के बारे में इत्तला दी जा रही है, जूलिया ने कहा। कैप्टन शकील तो कह रहा था कि मिशन किसी फार्मूले की वापसी का है, और तुम्हें गैंगस्टरों और बदमाशों के बारे में इत्तला दी जा रही है, जूलिया ने कहा। अब मामला चूंकि वाकई उलझ गया है, इसलिए अब तुम्हें तफसीलात बताना जरूरी है, ताकि मिलजुल कर इस मसले का कोई हल निकाला जा सके, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या उलझन है, बताओ, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने पहले उन्हें पिन कैमरे की नुमाइश से चोरी और फिर सफदर और उसके साथियों के जरिए शेरगढ़ के मार्टन से उसकी वापसी, और फिर टाइगर के जरिए रेड वुल्फ की सुपर एजेंटों एल्सा, मारिया और उसके साथी रॉजर की हलाकत की तफसील बता दी। इसके बाद अचानक टाइगर ने ही इत्तला दी कि साइंसदान डॉक्टर आरिफ को पुरअंदाज में हलाक कर दिया गया है, और इस मामले में टाइगर ने जो इंक्वायरी की उसके मुताबिक रेड वुल्फ की सुपर एजेंट लॉगी का नाम सामने आया। फिर मजीद इंक्वायरी से पता चला कि डॉक्टर आरिफ सर दावर से पिन कैमरा तो हासिल नहीं कर सका, अलबत्ता उसने इसके वर्किंग पॉइंट्स की कॉपी करके लॉगी को दे दी, और लॉगी डॉक्टर आरिफ को हलाक करके ये वर्किंग पॉइंट्स लेकर वापस नाराज पहुंच गई है। फिर मैंने यहाँ से जो इत्तलात हासिल की, इससे पता चला कि डॉक्टर आरिफ ने दानिस्ताइन वर्किंग पॉइंट्स में चंद ऐसी बुनियादी तब्दीलियां कर दी कि जब तक ये दुरुस्त ना की जाए पिन कैमरा तैयार नहीं हो सकता। डॉक्टर आरिफ हलाक हो चुका था, इसलिए एग्रीमेंट हुकाम ने ये वर्किंग पॉइंट साइंसदानों के एक ग्रुप के हवाले कर दिए कि वो इन्हें दुरुस्त कर सके। इस ग्रुप का जो नाम सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया है। इस ग्रुप का कोड नाम ब्लूबर्ड या डबल बी है। ये ऐसा नाम है जो बदमाशों के ग्रुप का तो हो सकता है, साइंसदानों के ग्रुप का नहीं हो सकता। इसलिए बात जहन में आई कि इस सिलसिले में अंडरवर्ल्ड से मालूमात हासिल की जाए। टाइगर चूंकि शुरू से ही इस मिशन के सिलसिले में अहम काम करता चला आ रहा था, इसलिए मैंने इसे यहाँ के अंडरवर्ल्ड में काम करने के लिए भेज दिया है, और मैं आप लोगों के साथ इसीलिए आया हूँ कि रेड वुल्फ को ला महाला ये इत्तला मिल चुकी होगी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उनके खिलाफ काम करने आ रही है। यहाँ आकर मैंने अपने तौर पर काम किया कि यहाँ इस डबल बी ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल कर सकूं, लेकिन कई अफराद से मुलाकात के बावजूद जब मसला हल ना हो सका तो मैं यहाँ के एक इंतहाई बाखबर आदमी से मिला, और इसे मैंने यहाँ का फोन नंबर दे दिया ताकि इस सिलसिले में मालूमात हासिल करके यहाँ मुझे फोन पर इत्तला दे सके, और उसकी इत्तलात को सामने रखकर मिशन के सिलसिले में प्लानिंग की जा सके। इसका फोन अभी तुम्हारे सामने आया है, और जो कुछ इसने बताया है इससे जाहिर होता है कि जब तक हम इस मार्कोटेंस को ट्रेस ना कर लें हम इस ग्रुप तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि अगर एक बार हम अंडरवर्ल्ड के चक्कर में उलझ गए तो फिर इससे बाहर निकलना खासा मुश्किल हो जाएगा। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा, तो फिर आपने क्या सोचा है? आप डिफेंस सेक्रेटरी के जरिए साइंसदानों के बारे में मालूमात क्यों हासिल नहीं करते? सफदर ने कहा, मैंने कोशिश की है, लेकिन वो ब्लू बर्ड के बारे में डिफेंस सेक्रेटरी को कुछ नहीं मालूम और ना ही इसके ऑफिस में किसी को मालूम है। ऐसा इतना मालूम हुआ है कि ये प्राइवेट ग्रुप है, सरकारी नहीं है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, इस ग्रुप को वर्किंग पॉइंट्स किसी के जरिए ही भिजवाए जाते होंगे और इनसे बाकायदा सौदेबाजी भी की गई होगी, इसलिए ला महाला हुकूमत के आदमियों का इसका इल्म होगा, सफदर ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन किसे मालूम हो, ये तो पता ही नहीं चल रहा, इमरान ने कहा। तो फिर इस मार्को टेंस को ही तलाश किया जाए, और क्या किया जा सकता है, सफदर ने कहा। इस तरह हम उलझ जाएंगे, जबकि साइंसदानों का ग्रुप एक दो हफ्तों में इस पर काम मुकम्मल कर लेगा, फिर इसे किसी खुफिया लेबोरेटरी में भेज दिया जाएगा, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने फोन का रिसीवर उठाया, इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। हेल्प क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा, तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया और इमरान ने क्रेडिट दबाकर दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए और आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। एल्फ क्लब, रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं प्रिंस ऑफ थम बोल रहा हूँ, एल्फ से बात कराओ, इमरान ने कहा। प्रिंस ऑफ धम्प, ये धम्प क्या है, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। एल्फ से पूछ लेना, उसे मालूम है, इमरान ने कहा। हेलो, एल्फ बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। प्रिंस ऑफ धम्प बोल रहा हूँ, फोन महफूज कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ अच्छा, एक मिनट, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। हाँ, अब खुलकर बोलो, लेकिन पहले ये बताओ कि इतने तवील अरसे बाद तुम्हें मेरे क्लब का नाम कैसे याद रह गया, दूसरी तरफ से बेतकल्लुफाना लहजे में कहा गया। खूबसूरत नाम तो जहन से चिमट जाता है, काश ये नाम किसी खूबसूरत खातून का होता तो फिर ये नाम दिमाग से ना चिमटता बल्कि दिमाग इससे चिमट जाता, इमरान ने जवाब दिया। तो दूसरी तरफ से एल्फ बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इतने तवील अरसे के बाद भी तुम्हारी बातें पहले ही जैसी हैं। बहरहाल बताओ, क्या काम पड़ गया है तुम्हें मुझसे, एल्फ ने कहा। क्या मतलब, क्या बगैर किसी काम के तुम्हें फोन नहीं किया जा सकता, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से एल्फ एक बार फिर हंस पड़ा। मुझे मालूम है कि तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते हो, जबकि अपनी बातों से दूसरों को ये जतलाते हो कि तुम मोहब्बत और दोस्ती की बिना पर फोन कर रहे हो। बहरहाल बोलो, क्योंकि मैंने एक अहम काम के लिए जाना है, एल्फ ने आखिर में संजीदा लहजे में कहा। साइंसदानों का एक ग्रुप है, ब्लू बर्ड या डबल बी, इसके बारे में तफसीली मालूमात चाहिए, इमरान ने कहा। सॉरी प्रिंस, वैसे वेरी सॉरी, इस सिलसिले में यहाँ कोई भी जबान नहीं खोलेगा, एल्फ ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम्हें मालूम तो है, लेकिन तुम किसी खौफ की वजह से बताना नहीं चाहते, इमरान ने कहा। हाँ, ऐसा ही समझ लो, क्योंकि यहाँ इसके खिलाफ जाने वाले का अंजाम इंतहाई इबरतनाक होता है, और चाहे जितना भी छुपाओ उन्हें बहरहाल मालूम हो ही जाता है, एल्फ ने जवाब देते हुए कहा। चलो, तफसील ना बताओ, कोई टिप ही दे दो, इमरान ने कहा। नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता, मुंह से भाप भी नहीं निकाली जा सकती, वरना इंसान को उठाकर वो लोग उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। आई एम सॉरी, अब मुझे फोन भी ना करना, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि इस ग्रुप का ताल्लुक बहरहाल बदमाशों से और गुंडों से है, जूलिया ने कहा। इमरान साहब, मुझे लगता है कि इस बार अंडरवर्ल्ड से टकराना ही पड़ेगा, वरना हम यहाँ बैठे वक्त ही जाया करते रहेंगे, सफदर ने कहा। बस एक और ट्राई और इसके बाद जैसे तुम कहोगे वैसा ही करेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फोन का रिसीवर उठाकर इसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाउडर का बटन भी उसने आखिर में प्रेस कर दिया। इंक्वायरी प्लीज। रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ कोई इदारा, क्लब या मुकाम बॉयलिंग वाटर या इससे मिलते जुलते नाम का है, इमरान ने कहा। बॉयलिंग वाटर या इससे मिलते जुलते नाम का तो नहीं, अलबत्ता BW के नाम से एक क्लब है, रॉगस रोड पर, आला तबके का क्लब है, दूसरी तरफ से बताया गया। इसका फोन नंबर दे दें, उसके मालिक के जनरल मैनेजर का नाम भी बता दें, इमरान ने कहा। मालिक और जनरल मैनेजर का नाम मास्टर जेफरे है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही नंबर भी बता दिया गया। तो इमरान ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। ये क्या बात हुई है इमरान साहब, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। एल्फ को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसने इनकार भी कर दिया है लेकिन साथ ही उबलते हुए पानी का इशारा भी दे दिया है, और अब ये BW क्लब सामने आया है और इंक्वायरी ऑपरेटर ने ये कहा है कि क्लब का आला तबके का से ताल्लुक है, लेकिन मालिक के नाम के साथ लफ्ज मास्टर बता रहा है कि इसका गहरा ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से है, क्योंकि ऐसा नाम सिर्फ अंडरवर्ल्ड में रोब जमाने के लिए रखा जाता है, इमरान ने कहा। लेकिन फिर भी बात तो वही अंडरवर्ल्ड की ही आ गई, सफदर ने कहा। बहरहाल बदनाम क्लबों में जाकर लड़ने से बेहतर है कि इस महजब क्लब में जाकर कॉफी पी जाए और फिर मास्टर जेफरे से गुफ्तगू का शर्फ हासिल किया जा सके, इमरान ने जवाब दिया तो सब ने ही इस बात में सर हिला दिए। लॉगी अपने सेक्शन हेडक्वार्टर में बैठी थी। कर्नल रिचर्ड ने पाकेशिया में जिस ग्रुप से रابطہ किया था कि वो इमरान की निगरानी कराए, उसकी तरफ से भी अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली थी, इसलिए वो बैठी सोच रही थी कि क्यों ना वो इमरान की यहाँ आमद का इंतजार करने की बजाय अपने सेक्शन समेत खुद पाकेशिया पहुँच कर इस इमरान का शिकार खेले, कि अचानक सामने पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लॉगी बोल रही हूँ, लॉगी ने तेज लहजे में कहा। जैकब बोल रहा हूँ मैडम, दूसरी तरफ से इसके सेक्शन इंचार्ज जैकब की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। क्यों कॉल की है, कोई खास बात, लोकी ने पूछा। यस मैडम, अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि वॉर स्ट्रीट पर एक एक्रीमियन आदमी ब्लू बर्ड के बारे में पूछता फिर रहा है, जैकब ने कहा। तो लोगी भी अख्तियार उछल पड़ी। अकेला है या पूरा ग्रुप है, लोगी ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। अकेला है, जैकब ने जवाब देते हुए कहा। इस वक्त वो कहाँ है, लोगी ने पूछा। पॉइंट 3 पर, उसी तरह से जवाब दिया गया तो लोगी भी अख्तियार उछल पड़ी। पॉइंट 3 पर क्या मतलब, वो वहां कैसे पहुंचा, लोगी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। मैडम, क्योंकि आपने इस सिलसिले में वाजह हिदायत दी हुई थी, इसलिए जैसे ही मुझे इत्तला मिली मैंने उसे अगवा करके पॉइंट 3 पर पहुंचाने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि वॉर स्ट्रीट से करीब भी हमारा पॉइंट 3 है, जबकि इसके वहां पहुंचने की इत्तला मुझे तब मिल गई थी जब ही मैंने आपको इत्तला दी। अब आप हुक्म दें तो हम उसे हलाक कर दें या फिर आप जैसे कहें, जैकब ने कहा। गुड शो जैकब, तुम वाकई बेहतरीन एजेंट हो, वेरी गुड। मैं खुद जाकर पॉइंट 3 पर इससे पूछ गछ करती हूँ, लॉगी ने तहसीनामेज लहजे में कहा। शुक्रिया मैडम, मैं पॉइंट 3 के इंचार्ज जॉनसन को आपके बारे में इत्तला दे देता हूँ, जैकब ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। तो लॉगी ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये कौन हो सकता है, क्या ये इमरान है या कोई और है, लॉगी ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर एक ख्याल के तहत इसने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, जॉनसन बोल रहा हूँ, रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लॉगी बोल रही हूँ जॉनसन, लॉगी ने कहा। यस मैडम, अभी चीफ जेकब का फोन आया था, क्या पॉइंट 3 पर तशरीफ ला रही हैं? जॉनसन ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। हाँ, क्या वो आदमी बेहोश है या होश में है? लॉगी ने पूछा। वो तो मुसलसल बेहोश है मैडम, जॉनसन ने जवाब दिया। तुम उसे रॉड्स में जकड़ दो और फिर मेरे वहां पहुंचने तक स्पेशल मेकअप वॉशर से उसका मेकअप वॉश करो, लॉगी ने कहा। यस मैडम, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया। जिस गैस से इसे बेहोश किया गया है उसका एंटी तुम्हारे पास मौजूद है? लोगी ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। यस मैडम, जॉनसन ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आ रही हूँ, लोगी ने कहा और रिसीवर रख दिया। और वो उठी और तेज तेज कदम उठाती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी कार पॉइंट 3 की तरफ उड़ी चली जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद उसकी कार एक कॉलोनी में दाखिल हुई और फिर एक औसत दर्जे की कोठी के सामने रुक गई। ये कोठी कॉलोनी से काफी हटकर एक साइड पर बनी हुई थी। कोठी के बाहर कोई नेम प्लेट वगैरह मौजूद नहीं थी। ये लॉगी के सेक्शन के तहत पॉइंट 3 था। यहाँ हर किस्म का असलहा, टॉर्चिंग रूम और मेकअप का सामान और 2 कारें इमरजेंसी के लिए हर सूरत में मौजूद रहती थी। इस पॉइंट का इंचार्ज जॉनसन था, वो यहाँ अकेला रहता था। लॉगी ने हार्न दिया तो कोठी का छोटा फाटक खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी सर झुकाए खिड़की से निकलकर बाहर आ गया। फाटक खोलो जॉनसन, लॉगी ने कहा। यस मैडम, जॉनसन ने बाकायदा सलाम करते हुए कहा और फिर तेजी से अंदर मुड़कर चला गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया तो लॉगी कार अंदर लेकर गई और एक तरफ मौजूद पोर्च में उसने कार रोक दी। यहाँ पहले से 2 कारें मौजूद थीं, लेकिन पोर्च इतना बड़ा था कि 2 कारों के बावजूद और 2 कारों की गुंजाइश मौजूद थी। लॉगी ने कार रोकी और फिर नीचे उतर आई। इस दौरान जॉनसन भी फाटक बंद करके करीब आ गया। क्या पोजीशन है मेकअप की? लॉगी ने पूछा। वो मेकअप में नहीं है मैडम, जॉनसन ने जवाब दिया तो लॉगी बेख्तियार चौंक पड़ी। तो फिर वो कौन हो सकता है? लॉगी ने बड़बड़ाते हुए कहा और मुड़कर तेज तेज कदम उठाती हुई टॉर्चिंग रूम की तरफ बढ़ गई। टॉर्चिंग रूम खासा बड़ा कमरा था जिसके सामने वाली दीवार के साथ रॉड्स वाली 10 कुर्सियां मौजूद थीं, जबकि पहली कुर्सी पर एक आदमी रॉड्स में जकड़ा था। इसका सर और जिस्म ढलका हुआ था। मेरा तो ख्याल था कि ये पाक एशियाई एजेंट होगा, लेकिन ऐसा होता तो ये ला महाला मेकअप में होता। लोगी ने सामने पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। ये भी तो हो सकता है मैडम कि पाक एशियाइयों ने वक्ती तौर पर इसकी खिदमत हासिल की हो, जॉनसन ने जो लोगी की कुर्सी के साथ खड़ा था राय देते हुए कहा। ओ हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इसे होश में ले आओ, लोगी ने चौंक कर कहा। तो जॉनसन एक कोने में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी से एक कोड़ा निकालकर इसे अपनी बेल्ट के साथ हुक किया और फिर अलमारी से एक लंबी गर्दन वाली बोतल उठाकर उसने अलमारी के पट बंद कर दिए और वापस मुड़कर वो रॉज में झकड़े हुए उस आदमी की तरफ बढ़ गया। उसने बोतल का ढक्कन हटाया और बोतल का दहाना उसकी नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद इसने बोतल हटाई और इसका ढक्कन बंद करके उसे जेब में डालकर वो मुड़ा और लोगी की कुर्सी के करीब आकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद इस आदमी के जिस्म में हरकत के आसार पैदा होने शुरू हो गए और फिर इसने कराहते हुए अंदाज में यकलक सर उठाया और आंखें खोल दी। पहले चंद लम्हों तक तो इसकी आंखों में धुंध के आसार छाए रहे, फिर यकलक इनमें शऊर की चमक उभर आई। इसने होश में आते ही लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि रॉड की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। उसने गर्दन घुमाकर हॉल का जायजा लिया और फिर इसकी नजरें सामने बैठी हुई लोगी पर इस तरह जम गई जैसे वो इसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मुझे यकीन आ गया है कि तुम आम आदमी नहीं हो बल्कि बाकायदा तरबियत याफ्ता हो, वरना आम आदमी होश में आने के बाद कभी इस अंदाज में रिएक्ट नहीं करता। लोगी ने कहा, तुम्हारा नाम लोगी है? अचानक इस आदमी ने कहा तो लोगी बेख्तियार उछल पड़ी। उसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। तुम मुझे जानते हो? कौन हो तुम? लोगी ने कदरे चीख कर लहजे में कहा। तुमने पाकेशिया में डॉक्टर आरिफ से वर्किंग नोट्स हासिल किए और फिर उसे दवा खिलाकर हलाक कर दिया, इस आदमी ने कहा तो लोगी ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। इसका मतलब है कि तुम्हारा ताल्लुक पाकेशिया सीक्रेट सर्विस से है, लोगी ने होठ चबाते हुए कहा। पाकेशिया? क्या मतलब? मैं एक क्रीमियन हूँ और मेरा नाम राशील है, इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अभी तो तुमने पाकेशिया का हवाला दिया है, लोगी ने कहा। क्या पाकेशिया से किसी एक क्रीमियन का को कोई काम नहीं दिया जा सकता? राशिल ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या काम दिया गया है तुम्हें और तुम्हारा क्या ताल्लुक है पाकेशिया से? लोगी ने सख्त लहजे में कहा। पहले ये बताओ कि क्या वाकई तुम लोगी हो और तुमने ही पाकेशिया में मिशन मुकम्मल किया है? राशिल ने कहा। हाँ, लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? लोगी ने कहा। मुझे तुम्हारा हुलिया तफसील से बताया गया था, राशिल ने जवाब दिया। क्यों? लोगी ने होंठ चबाते हुए कहा। इसलिए कि उनका ख्याल है कि तुम्हें ब्लू बर्ड नामी इस ग्रुप के बारे में इल्म है, जिसे वो वर्किंग नोट्स दिए गए हैं जो तुमने पाकेशिया से हासिल किए थे। लेकिन मेरा ख्याल मुख्तलिफ है, इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे भागने के बजाय अपने तौर पर इस ग्रुप को टेस्ट ट्रेस करने की कोशिश शुरू की, राशिल ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें क्यों यकीन था कि मुझे इस ग्रुप के बारे में मालूम होगा? लोगी ने कहा। इसलिए कि ऐसे लोग औरतों पर एतमाद नहीं करते, ये मेरे अंडरवर्ल्ड का तजुर्बा है, राशिल ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा तजुर्बा ही अक्सर गलत है, पूरे नाराक में सिर्फ मुझे ही इस बारे में इल्म है और किसी को भी नहीं, लोगी ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसे राशिल के अंदाज पर वाकई गुस्सा आ गया था, क्योंकि इसके लहजे में औरत का नाम लेते हुए ऐसी हिकारत थी जैसे औरत दुनिया की नफरत अंगेज मखलूक हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, जबकि पूरे नाराज को इस बारे में इल्म तो नहीं। तुम्हें तो किस तरह हो सकता है? तुम बेशक कुछ भी होगी, लेकिन बहरहाल तुम एक औरत हो और औरत कभी राजदार नहीं हो सकती। ये मेरा नहीं सदियों का तजुर्बा है, राशिल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझसे इस अंदाज में बात करो, जॉनसन, लोगी ने यकलख्त चीखते हुए कहा। यस मैडम, जॉनसन ने जवाब दिया। इसे यह के बाद दीगरे 5 कोड़े मारो, ये इसकी मामूली सी मामूली सजा होगी, लोगी ने चीखते हुए कहा। यस मैडम, जॉनसन ने कहा और तेजी से बेल्ट के साथ हुक किया हुआ कोड़ा निकाला और तेजी से आगे बढ़ा। दूसरे लम्हे कमरा शाई की आवाज के साथ ही इंसानी चीखों से गूंज उठा। टाइगर एक क्रीमियन मेकअप में नाराग के अंडरवर्ल्ड में घूमता फिर रहा था। इसने बेशुमार वेटर्स और ऐसे अफराद से जो अंडरवर्ल्ड से बेहद वाकिफ होते हैं भारी रकूमात देकर डबल बी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह इसे मुकम्मल नाकामी हुई थी। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और एक क्लब में पहुंच गया। वहां इसने एक सुपरवाइजर से इस सिलसिले में बात की तो इसने उसे एक स्पेशल रूम में बिठा दिया और कहा कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है कि जो इस बारे में बता सकता है। वो इसे अभी इसके पास भिजवा देगा। और फिर वाकई 10 मिनट बाद स्पेशल रूम का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी जिसके जिस्म पर भी क्लब की मखसूस यूनिफॉर्म थी अंदर दाखिल हुआ। तुम्हें ब्लू बर्ड ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल करनी है, इस आदमी ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि टाइगर उसे कोई जवाब देता, अचानक इस आदमी का बाजू हरकत में आया। उसके साथ ही टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी नाक पर कोई गुब्बारा सा फट गया हो और उसके साथ ही उसका जहन किसी तारीख दलदल में डूबता चला गया। पेचब इसकी आंखें खुली और शऊर बेदार हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो कल के इस स्पेशल रूम के बजाय किसी बड़े कमरे में रॉड्स में जकड़ा हुआ कुर्सी पर बैठा था। साइड पर कुर्सियों की पूरी कतार मौजूद थी, जबकि सामने कुर्सी पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जिसके साथ ही एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी बेल्ट से एक कोड़ा हुक किए खड़ा था। इस लड़की को देखते ही टाइगर के जहन में वो हुलिया आ गया जो इसे डॉक्टर आरिफ के साथ घूमने फिरने वाली एक क्रीमी लड़की लोगी का बताया गया था, और जो आखिरी रात डॉक्टर आरिफ के पास थी। और फिर टाइगर ने उसे गौर से देखा तो वो वाकई लोगी थी। गो लोगी ने इसे पाकेशिया के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन टाइगर ने उसे बताया कि वो एक रीमियन है और पाकेशिया से किसी पार्टी ने उसे ब्लू बर्ड ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल करने का टास्क दिया है। और फिर टाइगर, जिसने लोगी को अपना नाम राशील बताया था, ये सुनकर हैरान रह गया कि लोगी को इस ब्लू बर्ड ग्रुप के बारे में मालूम था। चुनाचा उसने फैसला कर लिया कि अब वो लोगी से हर कीमत पर मालूमात हासिल करेगा। इसने रोड से आजाद हो जाने के लिए फौरी तौर पर जिद्दोजहद शुरू कर दी। इसने दोनों टांगे पहले साइडों पर इस अंदाज में फैलाई जैसे इस अंदाज में बैठे बैठे थक गया हो, और फिर थोड़ी देर बाद उसने एक टांग को साइड से लेकर अकब की तरफ ले गया। लेकिन इससे पहले कि वो रॉड से आजादी हासिल करता, लोगी ने यकलक अपने साथी जॉनसन को इसे 5 कोड़े मारने का हुक्म दे दिया। और जॉनसन ने बेल्ट की हुक से कोड़ा बाहर निकाला और इसे हवा में चटकाता हुआ आगे बढ़ा। इसी लम्हे टाइगर का पैर अपनी तरफ मौजूद बटन तक पहुंच गया, और फिर जैसे ही जॉनसन ने कोड़े को हवा में लहराया, शाई की आवाज पैदा हुई और रॉड खुलने की हल्की आवाज इसमें दब गई। लेकिन इससे पहले कि कोड़ा टाइगर के जिस्म से टकराता, टाइगर ने किसी मस्त और ताकतवर मेंढे की तरह उछलकर ना सिर्फ जॉनसन के सीने पर जोरदार टक्कर मारी, बल्कि दूसरे हाथ से इसने जॉनसन के हाथ में मौजूद कोड़ा भी झपट लिया, और कमरा शाई की जोरदार आवाज के साथ ही तेज इंसानी चीख से गूंज उठा। और ये चीख जॉनसन की थी। ये क्या मतलब? लोगी ने यकलक उछल कर खड़े होते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे शाई की आवाज के साथ ही लोगी बुरी तरह चीखते हुए एक साइड पर जा गिरी। कोड़े की एक ही जरब ने उसकी जैकेट फाड़ दी थी। उसके साथ ही टाइगर की लात घूमी और उठता हुआ जॉनसन कनपट्टी पर भरपूर जरब खाकर दोबारा नीचे गिरा ही था कि टाइगर भी उछल कर चीखता हुआ एक साइड पर जा गिरा। लोगी नीचे गिरकर किसी उड़ने वाले सांप की तरह उछलकर उससे आ टकराई थी, और ये इस वक्त हुआ जब टाइगर जॉनसन को जरब लगाने के लिए एक टांग उठा चुका था, इसलिए वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और उछलता हुआ और चीख कर दूर जा गिरा। कोड़ा भी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। टाइगर ने नीचे गिरते ही बिजली किसी तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन यकलक जॉनसन किसी पहाड़ी चट्टान की तरह उस पर आ गिरा। और एक लम्हे के लिए टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे वो इस चट्टान के नीचे कुचला गया हो, लेकिन एक सेकंड के हजारवें हिस्से में उसका जहन जागा और दरवाजा दूसरे लम्हे भारी जिस्म का जॉनसन, जो अब दोनों घुटने उठाकर टाइगर के पहलू पर मारने की कोशिश में मसरूफ था, उड़ता हुआ उठकर उठ खड़ी होने वाली लोगी से जा टकराया, और वो दोनों चीखते हुए पीछे मौजूद कुर्सी पर गिरे और तो फिर कुर्सी समेत तो उलट कर पीछे जा गिरे। कुर्सी के टूटने की आवाज में इन दोनों के गिरने की आवाजें भी शामिल हो गईं। टाइगर ने कलाबाजी खाई, और फिर जब वो सीधा हुआ तो साइड पर पड़ा हुआ कोड़ा उसके हाथ में था, और उसके साथ ही कमरा शाई शाई की आवाजों के साथ मर्दाना और निस्वानी चीखों से गूंज उठा। टाइगर बगैर इस बात का लिहाज किए कोड़े खाने वालों में एक औरत है इस बुरी तरह इन दोनों पर कोड़े बरसा रहा था जैसे इसका बाजू बिजली से भी ज्यादा तेज हरकत करने वाली मशीन में तब्दील हो गया हो। चंद लम्हों बाद ही जॉनसन और लोगी दोनों ही साकित हो चुके थे। इन दोनों के जिस्मों से खून फवारों की तरह उबल रहा था। टाइगर ने कोड़ा एक तरफ फेंका और फिर तेजी से आगे बढ़कर अलमारी के करीब पहुंच गया, जहां जॉनसन या लोगी के हाथ से निकलकर गिरने वाला मशीन पिस्टल मौजूद था। इसने झुककर मशीन पिस्टल उठाया। मशीन पिस्टल उठाते ही उसकी नजरें अलमारी के निचले खाने में पड़े हुए एक बड़े से मेडिकल बॉक्स पर पड़ी तो इसने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गया हो। दूसरे लम्हे वो मुड़ा और उसके साथ ही कमरा रेड रेड की आवाज से गूंज उठा और गोलियां जॉनसन के सीने में उतरती चली गईं। टाइगर को जब यकीन हो गया कि अब जॉनसन के जिंदा बच जाने का कोई इम्कान नहीं रहा तो इसने मशीन पिस्टल जेब में डाला और तेजी से मुड़कर दौड़ता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी में मौजूद मेडिकल बॉक्स उठाया और लाकर लोगी के करीब फर्श पर रख दिया। लोगी का पूरा जिस्म उधड़ चुका था। टाइगर ने मेडिकल बॉक्स से इंजेक्शन निकाले और फिर यके बाद दिखे उसने तीन इंजेक्शन लोगी को लगा दिए। इसके बाद इसने अलमारी के निचले खाने में मौजूद पानी की दो बोतलें लाकर पानी की मदद से लोगी के जख्मों को धोना शुरू कर दिया। जख्मों को धोने के बाद उसने तमाम जख्मों पर मखसूस क्रीम लगाई और फिर इन जख्मों की बाकायदा बैंडेज करनी शुरू कर दी। वो इस तरह इस काम में मगन था जैसे ये इसका अवलीन फर्ज हो। हालांकि लोगी को इस हद तक जख्मी करने वाला भी वो खुद था। बैंडेज करने के बाद उसने यके बाद दीगरे दो इंजेक्शन मजीद लोगी के बाजू में लगाए और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासरात उभर आए क्योंकि अब लोगी की हालत खतरे से अक्सर बाहर हो चुकी थी। टाइगर ने उसकी नब्ज चेक की और फिर एक तवील सांस लेकर वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसे खतरा था कि उसकी अदम मौजूदगी में लोगी होश में आ गई तो वो इसके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती थी क्योंकि लोगी थोड़ा सा मौका मिलते ही जिस अंदाज में टाइगर से लड़ी थी इससे टाइगर को अंदाजा हो गया था कि गो जॉनसन भी तरबियत याफ्ता है लेकिन ये औरत लोगी बेहद तरबियत याफ्ता है। इसलिए टाइगर ने इस रफ्तार से इन पर कोड़े बरसाए थे कि ना ही जॉनसन संभल सका था और ना ही लोगी और ना शायद टाइगर इतनी आसानी से इन पर काबू नहीं पा सकता था। टाइगर इस कमरे से निकलकर पूरी इमारत में घूमता रहा। वहां और कोई आदमी नहीं था। एक कमरे में जॉनसन के लिबास मौजूद थे। टाइगर ने एक लिबास का इंतखाब किया और फिर वो उसे लेकर वापस आ गया। उसने लोगी को उठाकर एक दरमियानी कुर्सी पर डाला और फिर कुर्सी के अकब में जाकर उसने बटन प्रेस कर दिया तो लोगी के जिस्म पर रॉड्स नमूदार हो गए। टाइगर ने एक नजर रॉड्स और लोगी के जिस्म पर डाली और फिर वो मुतमईन हो गया कि अब ये रॉड से बाहर नहीं निकल सकेगी। वैसे भी वो शदीद जख्मी थी और होश में आने के बाद उसके लिए मामूली सी हरकत भी करना इंतहाई तकलीफ का बायस बन सकता था। इसलिए टाइगर मुतमईन हो गया और कुर्सियों के अकब से निकलकर सामने की तरफ आया। उसने मेडिकल बॉक्स उठाकर उसे वापस अलमारी में रखा और एक बार फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे ख्याल आ गया था कि उसकी यहाँ मौजूदगी के दौरान अगर किसी का फोन आ गया तो फोन अटेंड ना होने पर उसे शक भी पड़ सकता था। इसलिए इसने फोन को यहीं ले आने का फैसला किया क्योंकि यहाँ भी फोन सॉकेट मौजूद था। इसने फोन पीस को एक मेज पर रखा और फिर इसकी तार को फोन सॉकेट से मुंसलिक करके इसने रिसीवर उठाकर टोन चेक की। जिस कुर्सी पर पहले लोगी बैठी हुई थी वो टूट चुकी थी। इसीलिए टाइगर ने कोने में पड़ी हुई एक और कुर्सी उठाई और उसे लाकर इसने लोगी की कुर्सी के सामने रख दिया और फिर इसने आगे बढ़कर दोनों हाथों से लोगी का नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब लोगी के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हुए तो टाइगर ने हाथ हटाए और पीछे हटकर वो कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गया। थोड़ी देर बाद लोगी ने कराहते हुए आंखें खोली और उसके साथ ही उसने उठने की कोशिश की लेकिन अचानक हिलने की वजह से उसके मुंह से चीख सी निकल गई और उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ गया। ये क्या मतलब? मेरे जिस्म में दर्द? ओह, कोड़े! लोगी ने नीम बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते हुए कहा और जल्द ही उसकी आंखों में शऊर की चमक उभर आई। वो अब हैरत भरी नजरों से कभी अपने आप को देखती और कभी सामने बैठे हुए टाइगर को और फिर उसकी नजरें साइड पर पड़ी हुई जॉनसन की लाश पर जम सी गईं। तुमने मुझ पर इस कदर बेरहमी से कोड़े बरसाए थे? तुमने? लोगी ने बड़े नफरत भरे लहजे में कहा। हाँ, लेकिन इस बेरहमी का मदावा तो मैंने तुम्हारा इलाज करके कर दिया है, वरना अब तक तुम भी जॉनसन की तरह लाश में तब्दील हो चुकी होती। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बैंडेज की है? मगर क्यों? लोगी ने ऐसे लहजे में कहा कि जैसे उसकी समझ में कुछ न आ रहा हो। तुम इंतहाई हैरत अंगेज और ना समझ में आने वाले आदमी हो। पहले तुम तो इंतहाई बेरहमाना अंदाज में मुझ पर फोड़े बरसाते हो, फिर तुमने मेरे जख्मों की बैंडेज की। ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा, लॉगी ने कहा। अब तुम पूरी तरह होश में आ चुकी हो, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ कि ब्लू बर्ड की तफसील क्या है। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, लॉगी ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर मैंने खामखा तुम पर मेहनत की और अपना वक्त जाया किया। टाइगर का लहजा यकनक बदल गया और उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। रुको रुको, मेरी बात सुनो। तुमने मुझे जिस हालत में देखा है, इसके बावजूद तुमने मुझे गोली नहीं मारी, ये कैसे मुमकिन है? लोगी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने मुझे बताया था कि तुम ब्लू बर्ड ग्रुप के बारे में जानती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी बैंडेज की है, वरना जिस तरह जॉनसन के सीने में गोलियां उतरी हैं, इस तरह तुम्हारे जिस्म को भी मैं गोलियों से छलनी कर देता। और अब आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे सच सच बता दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर चला जाऊंगा, वरना अगर तुमने इधर उधर की बातें की तो दूसरे लम्हे तुम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए कूच कर जाओगी। टाइगर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम्हारा असल नाम क्या है? लोगी ने रुक रुक कर कहा। मेरा नाम तो टाइगर है, टाइगर ने कहा। तो लोगी इस तरह उछली कि जैसे कुर्सी में यकलख्त हजारों वोल्टेज का करंट दौड़ गया हो। मगर तुम्हारा मेकअप क्यों वॉश नहीं हुआ? लोगी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मेकअप का फन अब इस हद तक तरक्की कर चुका है कि तुम्हारे सुपर मेकअप वॉशर भी बेकार हो गए हैं, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तो तुम इमरान के शागिर्द हो और तुमने एल्सा, मारिया और रॉजर को हलाक किया था, लोगी ने कहा। तो इस बार हैरत से उछलने की बारी टाइगर की थी। ये बात तुमने किस पस मंजर में की? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा ताल्लुक रेड वुल्फ से है और हमें इतना मिल चुकी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले अली इमरान के एक शागिर्द जिसका नाम टाइगर है ने एल्सा, मारिया और रॉजर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हलाक कर दिया है। इसके बाद मैं पाक एशिया गई और मैंने मिशन मुकम्मल किया और वापस आ गई। फिर हमें इत्तला मिली कि मेरा नाम भी वहां सामने आ गया है, इसलिए हम यहाँ इमरान और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की आमद के मुंतजर थे। फिर मेरे सेक्शन को तुम्हारे बारे में इत्तला मिली कि तुम यहाँ ब्लू बर्ड ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल करते फिर रहे हो, चुनाचा तुम्हें बेहोश करके यहाँ लाया गया। अब ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारा मेकअप वॉश न हो सका, इसलिए हमने यही समझा कि तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मकामी एजेंट हो। इसके बाद अचानक सूरत हाल बदल गई, न जाने तुमने कैसे रॉड से निजात हासिल कर ली, लोगी ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुमने ये बात बहुत देर से पूछी है, हालांकि ये तुम्हें पहले पूछनी चाहिए थी। बहरहाल ये हमारे लिए बड़ी मामूली सी बात है और अब फजूल बातें बहुत हो चुकी, इसलिए बेहतर है कि अब फाइनल बात हो जाए। या तो तुम सब कुछ बता दो और मेरा वादा है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, या दूसरी सूरत में तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। क्या वाकई तुम अपना वादा पूरा करोगे? लोगी ने पूछा। हाँ बिल्कुल करूंगा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम आजाद हो जाने के बाद मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई करती हो और क्या नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ मालूमात हासिल करनी है और ये मालूमात मैं अपने उस्ताद अली इमरान को पहुंचा कर फारिग हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं यहाँ मौजूद ही नहीं होगा तो मेरे खिलाफ कोई क्या कार्रवाई कर सकता है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ब्लू बर्ड ग्रुप का इंतजामी चीफ मार्को टेंस है जो खुफिया रहता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो किस रूप में रहता है। और मुझे उसकी दोस्ती पर बहुत फख्र है, लॉगी ने कहा। तुम फिर पटरी से उतर रही हो, टाइगर का लहजा मजीद सख्त हो गया। इसका मतलब है कि तुम इंसान नहीं हो, लौकी ने बड़े मुसर्रत भरे लहजे में कहा, जैसे उसकी अना को बेहद तस्कीन पहुंच रही हो। तुम ये बताओ कि मार्को टेंस कहाँ और किस रूप में रहता है, और ये भी सुन लो कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बैठा तुम्हारी फजूल बातें सुनता रहूं। अब अगर तुम पटरी से उतरी तो एक लम्हा देर किए बगैर तुम्हें गोली मार दूंगा, फिर मैं खुद ही मार्को टेंस को तलाश कर लूंगा, टाइगर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा।